शान को वहां देखकर आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं और वो आंखें फाड़े उसे देखते हुए हैरानी से बोली, आप यहां इस वक्त? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं, जिसे तुम बिना मेरी मर्जी के अपने साथ यहां ले आई हो, शान ने बेहद गुस्से में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आरवी का चेहरा उतर गया। उसने झट से सफाई देते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लाई हूं अंशिका को, बड़ी माँ, बड़े पापा और डैड के कहने पर लाई हूं। वो मुझे छोड़ नहीं रही थी और मुझे माँ के पास आना था, तो मुझे उन्हें भी साथ में लाना पड़ा और मैंने उनका अच्छे से ध्यान रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। शान एक बार फिर अकड़ते हुए बोला, लुक, मुझे तुम्हारी किसी बकवास या सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तो अंशिका को भेजो, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, सारा वक्त तुमसे बहस करता रहूँ इतना फ्री नहीं हूँ मैं, और ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है। उसकी बात सुनकर आरवी को भी गुस्सा आने लगा था, पर उसने खुद को संभालते हुए आराम से जवाब दिया, अंशु अभी सो रही हैं, कल बहुत मस्ती की थी उन्होंने तो थक गई हैं, आधी नींद में जगाया तो सारा दिन चिड़चिड़ी रहेंगी, और फिर अभी टाइम ही कितना हुआ है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठाना है, कुछ देर रुक जाइए, मैं कुछ देर में उन्हें उठा दूंगी। आरवी इतना कहकर सामने से साइड हट गई। शान कुछ देर सोचने के बाद अंदर चला गया। आरवी ने उसको सोफे पर बिठाया, फिर खुद किचन में चली गई। शान अब नजरें घुमाकर पूरे घर को देखने लगा। मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही सिंपल तरीके से सजाया गया घर, ज्यादा चीजें नहीं थीं, पर आम लोगों की जरूरत की हर चीज थी वहां। बहुत ही साफ सफाई थी और घर को बढ़िया तरीके से सजाया गया था। ये सब देखते हुए शान के लगों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई और कुछ तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं, साथ ही कुछ आवाजें भी आने लगीं। फ्लैशबैक, माँ! एक 7 साल का लड़का ऐसे ही घर में सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। आवाज़ सुनकर किचन से एक सुंदर सी औरत निकलकर बाहर आई। उन्होंने सूती सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, एकदम सादगी की मूरत, पर चेहरे पर अलग ही तेज था। सादगी में भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। किचन से बाहर आकर उन्होंने सीढ़ियों की तरफ नजरें घुमाई और लड़के को देखकर बोली, क्या हुआ शान, तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? उनकी बात सुनकर शान, जो तब 7 साल का था, उसने परेशान होकर कहा, माँ, मेरी बुक नहीं मिल रही है, आज सर चेक करेंगे, अगर नहीं लेकर गया तो पनिशमेंट मिलेगी। वहीं होगी, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं ढूंढ कर देती हूँ। इतना कहकर आंटी, मतलब सावित्री जी, उसके साथ चलने लगी तो शान के लबों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। सावित्री जी शान के कमरे में पहुंची तो सारा कमरा बिखरा हुआ था। उन्होंने घूर कर शान को देखा तो उसने मासूम सी शक्ल बना ली। सावित्री जी ने अब पल्लू को कमर में खोसा और अलमारी से उसके स्कूल यूनिफॉर्म निकालकर उसको देते हुए बोली, जाकर नहा कराओ, मैं सब समेटती हूँ। शान मुस्कुराकर वहां से चला गया। सावित्री जी बिखरे हुए सामान को ठीक करके उनकी जगह पर रखने लगीं। साफ सफाई करते हुए उन्हें पलंग के नीचे एक बुक मिली तो उन्होंने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, क्या होगा आपका हमारे बिना, एक सामान भी ठीक से नहीं रखते, जरूर पढ़ते पढ़ते ही रात को सो गए होंगे और बुक पलंग के नीचे जा गिरी और आपने यहाँ छोड़कर हर जगह इसे ढूंढ लिया होगा और एक बुक के लिए सारा कमरा फैला दिया। उन्होंने बुक निकाली, फिर उसका बैग जमाने के बाद जैसे ही मुड़ने को हुई, उनके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, सावित्री जी जरा हमारे जुराबें ढूंढ दीजिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है हमें और जुराबें हैं कि हमें मिल ही नहीं रही हैं। सावित्री जी ने गहरी ठंडी सांस छोड़ी और पीछे पलटी तो मुंह लटकाए सुभाष जी खड़े थे। तब वो जवान हुआ करते थे और बिल्कुल शान के ही जैसे हट्टे कट्टे हैंडसम आदमी लग रहे थे। उन्हें देखकर सावित्री जी ने उन्हें घूरा, फिर वहां से निकलते हुए बोली, आप बेटे दोनों को कभी कुछ नहीं मिलता है और दोनों की चीजें ढूंढते ढूंढते मेरी तो लगता है सार उम्र ही निकल जाएगी, चलिए आपकी जुराबें भी ढूंढ देती हूँ। सुभाष जी मुस्कुराकर उनके पीछे चल पड़े। सावित्री जी ने कमरे में कदम रखा तो यहाँ का हाल तो शान के रूम से भी खराब था। ये देखकर उन्होंने अपना सर पीट लिया और घूर कर सुभाष जी को देखा तो उन्होंने मासूम सी शक्ल बना ली। आप दोनों बाप बेटे मिलकर एक दिन मुझे पागल करके ही रहेंगे, उन्होंने परेशान होकर कहा और चीजें उठाते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड के नीचे वाली शेल्फ से जुराबें निकाली और उनके तरफ घूम गई। यहीं तो रखी थी और आपने सारा कमरा बिगाड़ दिया, उन्होंने नजरें घुमाते हुए परेशान होकर कहा तो सुभाष जी ने उनके हाथ से जुराबें ले ली और पहनते हुए बोले, आदत आपने ही बिगाड़ी है, अच्छे भले शादी से पहले हमें अपनी हर चीज़ का पता होता था कि क्या कहा है और अब हर चीज़ के लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है। रहने दीजिए, सब समझती हूँ मैं, दोनों बाप बेटे जानबूझकर रोज़ मेरा काम बढ़ा देते हैं, वो तो छोटा है, आप तो समझा कीजिए, 100 काम होते हैं घर में और आप रोज़ मेरा काम और बढ़ा देते हैं, सावित्री जी ने सब सामान समेटते हुए कहा तो सुभाष जी उठकर उनके पास आ गए और उनकी मदद करते हुए बोले, ये तो हमारा प्यार है आपके लिए, आपको तो अपने लाडले बेटे और काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो आपके बिजी शेड्यूल से अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है ताकि कुछ वक्त तो आप हमारी आंखों के सामने रहें और आपके चांद से चेहरे को अपनी निगाहों में बसाकर हम काम पर जा सकें।
उनकी बात सुनकर सावित्री जी के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने उनके हाथों से सामान लिया और फाइल पकड़ाते हुए बोली, ये मैं बाद में कर लूंगी, अभी आपको देर ही रही है, चलकर बाहर बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सुभाष जी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा तो सावित्री जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, बस कीजिए, आप तो शान से भी छोटे बच्चे बन गए हैं, सच में बहुत काम है मुझे, आपको भी तो जाना है, अपनी शरारत बाद में कर लीजिएगा। वो उनके बगल से निकलकर चली गई तो सुभाष जी भी मुंह लटकाकर वहां से चले गए। दोनों बाहर पहुंचे तब तक शान भी स्कूल यूनिफॉर्म पहने तैयार होकर वहां आ गया। उसने सुभाष जी को गुड मॉर्निंग कहा और उनके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। कुछ देर में सावित्री जी वहां आई और दोनों के सामने थाली रखते हुए बोली, खाना।